हेलो,
अस्सलाम वालेकुम फूफी जान, बेजाद हूँ।
पहचान लिया, काम क्या है?
लगता है गलत मौके पर मुजाइम हुआ हूँ।
बुरा न मानना, हकीकतन ऐसा ही है।
देखिए, आपको हक पहुंचता है कि मुझसे नाराज हूँ।
देखो, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मतलब की बात पे आ जाओ।
ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
किस बात का?
उस मेहरबानी की खातिर जो आप सुरैया और मनुचेर पर कर रही हैं।
यतीम खाने से बच्चा लेने के बारे में कह रहा हूँ।
वो बच्चे के माँ बाप बनने के काबिल हैं।
उम्मीद है कि इसी तरह होगा, यही काम था।
नहीं,
ये कहना चाह रहा था कि चचा ने एक वसीयतनामा छोड़ा है जो उनके वकील के पास है।
कैसा वसीयतनामा?
मुझे नहीं मालूम, पर वकील ने मुझसे कहा
कहा
है
कि फैमिली के अफराद को इकट्ठा करूं ताकि सबके सामने उसे पढ़ा जाए।
कब?
अभी वक्त मुशख्खस नहीं है, लेकिन टाइम फिक्स होने के बाद आपको इत्तला दे दूंगा।
अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
वालेकुम अस्सलाम भाई, ठीक हो ना?
दरवाजे पे कोई मिलने आया?
भाई ठीक ठाक है ना? सर हाँ भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, सलाम अलैकुम डॉक्टर
साहब, कैसे हो बेटे? ठीक तो हो?
अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये सब क्यों सहमत कर दी भाई, क्यों इतना सब सामान कुछ ले आई?
चेहरे और रुखसारों की लाली बता रही है कि छुटकारा हासिल हो गया है।
नशा छोड़ना और इस लानत से जान छुड़ाना सब आपकी मेहरबानी है जनाब।
खुद पर भरोसा रखो भाई, ये सब खुदा की मशीयत और तुम्हारे इरादे की वजह से। अब जल्दी करो, वापस जाएंगे तो बहुत से अधूरे काम मुकम्मल करने हैं। क्या है, रो क्यों रहे हो? कुछ हो गया है क्या जो मुझे नहीं मालूम है?
अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो खुशी के आंसू हैं। सीना,
जब हम बच्चे थे तो गली में झूले वाला आता था, सारे बच्चे झूले में बैठ जाते थे, मेरे और मेरी बहन के पास बैठने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए कोने में खड़े होकर देखा करते थे। उसके बाद से जिंदगी का झूला हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं झूला, यहाँ तक कि आप हमारी जिंदगी में आए। अब हालात बदल चुके हैं, काश यहाँ रहते, हम आपको बहुत याद करते हैं, हम आपके बहुत आदि हो गए हैं।
ये सब बेकार की बात है, इंसान जब जिंदा होता है तो कोई नहीं सोचता, सब उस दिन के बारे में सोचते हैं कि जब वो नहीं होगा।
अरे भाई मेरे भाई, फोन और इंटरनेट ऐसे ही मौकों के लिए है, एक दूसरे से बाखबर होते रहेंगे।
देखो सीना बेटा, जिस दिन बगैर एहसान जताए किसी के साथ भलाई करोगे और किसी को शर्मिंदा किए बगैर माफ करोगे तो समझ लो कि उसी दिन तुमने हकीकी ईमानों में जिंदगी गुजारी है। ठीक है, अब जल्दी इस हालत से बाहर निकलो
जी
और असली जिंदगी जियो।
जरूर। हाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ पर बैठिए,
आप लोग आइए, बैठिए,
आप बैठिए।
उमा साहब आप बैठिए।
नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि हम
बैठे। मैं अभी एक बेंच लेके आता हूँ।
माना कि नशा छोड़ने के बाद पहलवान बन गए, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।
रुकिए, मैं मदद करूंगा। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ?
अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर बुलाऊं? अरे मैं खुद डॉक्टर हूँ।
ठीक तो है?
पास में है, कोई खास बात नहीं है, ठीक हो जाएगा।
बेहतर है?
ठीक है, बहुत अच्छा है। अरे भाई बहुत अच्छा है।
क्या बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब?
ये कि फैमिली के अफराद मेरे इर्द-गिर्द जमा है।
ये मजाक था डॉक्टर साहब?
नहीं, जब फैमिली इर्द-गिर्द होती है और बेगम साथ होती है तो इंसान की तबीयत ठीक हो जाती है।
सलाम फूफा जी।
वालेकुम सलाम, ठीक हो?
बहुत शुक्रिया।
सब आ गए?
सब आ गए, आपका इंतजार है, बस आ जाइए।
फैमिली के सब अपराध आ चुके हैं?
जी जी वकील साहब, सब आ चुके हैं, सिर्फ मेरी सास महदुख साहबा नहीं आई हैं। मरहूम हिसाम साहब की भाभी सुरैया भी आ गई हैं, मेरी अहलिया है।
पर मैंने ताकीद की थी कि सब इकट्ठे हो जाएं।
मैं अपनी वालिदा की जगह हाजिर हुआ हूँ।
उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बहुत कमजोरी हो रही थी, इसलिए तशरीफ नहीं ला सकी। बहुत माजरत भी कर रही थी आप सबसे।
ठीक है, अगर दूसरे अफराद को एतराज ना हो तो मैं अपना काम शुरू करता हूँ।
आप शुरू कर सकते हैं, कोई मसला
जी, आप शुरू कर सकते हैं।
असल में बात उस जमाने की है जिन दिनों फरूजान फर साहब की नजर चली गई थी। एक दिन मैं दफ्तर आए और मुझसे कहा कि उनके लिए एक कानूनी वसीयतनामा तरतीब दूं।
माफ कीजिएगा जब मैं पूछ रहा हूँ, तमाम जायदाद के बारे में?
नहीं, मैंने उनसे अर्ज किया कि कानून की रूह से इंसान अपने माल के तीसरे हिस्से से ज्यादा के बारे में वसीयत नहीं कर सकता। उन्होंने फैसला किया कि उनकी मर्जी के मुताबिक बाज डॉक्यूमेंट तरतीब दूं।
कैसे डॉक्यूमेंट्स?
एक मिनट, मैं अभी अर्ज करता हूँ। ये तीन चेक हैं। एक चेक जिसका मबलग 8 अरब रियाल है, जनाब बहजाद फरूजान फर के नाम। एक चेक 4 अरब रियाल का मोहतरमा सुरैया फरूजान फर के नाम। और आखिरी चेक 1 अरब रियाल का मोहतरमा महदुख वंदेजाद के नाम। प्लीज ये लेके सबको दिखाएं।
बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा बैद साहब, ये पैसा किस लिए है?
ये सादत आबाद की जमीनों की कीमत में इख्तलाफ का पैसा है, और हकीकत में ये उस इख्तलाफ की बाबत है जो आपके अब्बू और चचा मरहूम के दरमियान मौजूद था। उन्होंने जमीनों की आज की कीमत का हिसाब लगाया है।
अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए। वाकई हिसाम साहब एक भरपूर इंसान थे वाकई।
और ये करज में 1000 मीटर जमीन के कागजात हैं जो कि मोहतरमा फातिमा फरूजान फर साहबा के नाम है।
मेरे हैं?
जी, ये आपके वालिद की मीरास के बाबत है।
लेकिन मैंने तो उनसे कह दिया था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए।
उन्होंने अपने इत्मीनान के लिए ये जमीन आपके नाम लिखी है, ये लीजिए।
जी।
और ये मरहूम फरूजान फर साहब की राइटिंग और दस्तखत के साथ एक लेटर जिसमें वो तमाम बातें लिखी हैं जो मैंने बताई, ताकि खुदा न खास्ता कोई शक व शुबा बाकी न रहे। लीजिए ये सीलशुदा लेटर।
निगार।
जी अम्मी।
बेटा उठो, हलवा तकसीम करो ताकि तुम्हारे वालिद मरहूम के रूह को सवाब मिले जो सबके लिए खैर और बरकत का सबब थी।
खुदा गरीब की रहमत करे,
खुदा उनकी
खुदा मगफरत करे।
मेहरबानी करके ये रसीद दे दें ताकि इस पर दस्तखत करें।
जी जरूर
लीजिए।
बेजाद देखो तुम इसमें साइन करो।
खुदा हमारे दाया की मगफरत करे, उनकी बख्शिश करे।
डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए?
नहीं। चाय पियोगे?
नहीं, बहुत शुक्रिया। लीजिए ये आपकी खिदमत में, आपके पास रहे तो बेहतर होगा।
क्या ये वो ही पैसा नहीं है जिसके लिए तुमने अपने चाचा के खिलाफ शिकायत की थी? अब जबकि मिल गया है तो जैसे चाहो इसे खर्च करो।
अगर मैंने रिपोर्ट की तो सिर्फ उस हकीकत को सामने लाने के लिए जिसका खुद चचा ने इतराफ किया था।
बेहसार बेटा, अब तुम मेरे दामाद हो, میرے بیٹے کے جیسے ہو، اب مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی عزیز ہو۔ میرے لیے تم اور باہر میں کوئی فرق نہیں۔ شاید پچھلے اختلافات کی وجہ سے تم سے ناراض رہی ہوں گی، لیکن تمہاری دشمن نہیں ہوں بیٹا۔
امید ہے ایسے ہی ہوگا چچی جان، چلتا ہوں۔
بہزاد بیٹا، اسے لیتے جاؤ۔
شب بخیر۔
جناب آئیے، یہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے لے لیں۔
جی صاحبہ،
اپنے کوٹ کے بٹن میں بند کر۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
دے دیں مجھے۔ اس کو بھی ڈگی میں رکھ دیں۔
کیا بات ہو گئی؟
اس گھر کو بھلانا جان کنی کی طرح ہے۔ بہت مشکل ہے کہ انسان اپنی تمام یادوں کے ساتھ اس کو چھوڑ کے چلے۔
یادیں صرف دیوار کے اوپر لگی ہوئی فریم تو نہیں ہے کہ رہ جائیں، یادیں ہمیں شکلیں انسان کے پاس رہتی ہیں۔ اب جلدی کریں، اور ایئرپورٹ بہت دور ہے۔ ہاں نعمت صاحب۔
جی صاحبہ،
یہ گھر آپ کے ہاتھ میں۔
آپ بالکل بے فکر رہیں،
میری بہن آ کے دیکھ بھال کر لیا کرے گی۔ آپ کو بھی اس سے کام ہو تو اسے فون کر لیں۔
جی جی، یہ نمبر ہے۔
ڈاکٹر صاحب نہیں آئیں گے، زکام ہو جائے گا۔ ہاں
اچھا ٹھیک ہے نیما صاحب۔
جی جی،
کہا سونا معاف کیجیے گا،
ہم نے آپ سے صرف اچھائی ہی دیکھی ہے۔ خدا حافظ۔
دیکھو اچھی طرح دیکھ بھال رکھنا یہاں کی۔
خدا حافظ۔
منوچر، اس وقت کیا کر رہے ہو؟ سو کیوں نہیں رہے ہو تم؟
السلام علیکم۔ سو رہی تھی کیا؟
ہاں۔
ارے سونا کیسا، سونے کے لیے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ کل کو ایک گز زمین میں ہی سونا ہے نا، ہزاروں حسرتیں اور ارمان لے کر سو جائیں گے۔
آدھی رات کو فلسفی بن گئے ہو تم، کھڑے ہو سونے چلو۔
نہیں بیگم صاحبہ، اقتصاد دان بن گیا ہوں۔ ایک منٹ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو، بیٹھو۔ تو دیکھو ذرا کیسا ہے
یہ۔ کیا ہے
یہ؟ واقعی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے، واقعی نہیں سمجھ پا رہی ہو تم؟
او تو میرے پیشے کا تمہاری اس ڈرائنگ سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیا کیڑے مکوڑے بنائے ہیں تم نے؟
لو اسی لیے تم ترقی نہیں کر پا رہی ہو نا۔ دیکھو سریا۔ اچھا بتاؤ سریا، اس گھر کا عرض کتنا ہے؟
نہیں معلوم مجھے۔
تم 12 میٹر فرض کر لو۔
اچھا پھر؟
تم چاہتی ہو کہ یہ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور جس کی ایک دن بجلی کٹ جاتی ہے، ایک دن پانی کٹ جاتا ہے، کبھی کچھ خراب ہو جاتا ہے اور چھت گرنے والی ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے؟
اچھا تو پھر؟
سریا، اس گھر کی لوکیشن کمرشیل ہے، یعنی اگر ہم اس گھر کو مسمار کر دیں تو اس کی جگہ کم از کم 12 فلور تجارتی رہائشی فلیٹس بنا سکتے ہیں، جس کی ہر منزل پر 2 فلیٹ ہوں۔
کن خوش فہمیوں میں ہو تم؟ ہاں کیا سوچ رہے ہو؟
ارے پیسے کی کیا ضرورت ہے، اصلی خزانہ تو اس گھر کی زمین ہے۔ جانتی ہو میں نے پچھلے 1 سال میں کتنے پراپرٹی ڈیلرز کو یہاں سے بھگایا ہے؟ میں ایک اچھے موقع کا منتظر تھا۔
تو کیا اب اچھا موقع ہے؟
اور کیا۔
آہاں، तो तुम उन चंद पैसों की आस लगाए बैठे हो जो ताया जान की तरफ से हमें मिले हैं। फर्ज करो मैंने ये पैसा ले भी लिया, क्या 400 मिलियन में हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं?
अरे लगता है तुम समझी नहीं, बात बिल्कुल हाँ। वाजे है, जो प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ बिल्डिंग में शरीक होगा वो हमसे पैसा थोड़ी लेगा, जमीन हमारी है, बनाने का पैसा उसका, हम ये जमीन उसके सुपुर्द करके खुद यहाँ से चले जाएंगे, एक साल बाद आके 12 तिजारती और रहायशी फ्लैट्स की चाबियां ले लेंगे, अलबत्ता मेरे नक्शे के मुताबिक पहला फ्लोर अम्मी को दे देंगे, वहाँ ऊपर अपने लिए खूबसूरत सा पेंट हाउस बना देंगे जिससे तेहरान के चारों तरफ का नजारा किया जा सके, और इस 400 मिलियन को लेके अम्मी के साथ तेहरान के शुमाल के पौश इलाके में एक 400-500 मीटर का बड़ा शानदार सा घर पगड़ी पर ले लेंगे, एक ऐसी जगह कि जब तुम रात को कूड़ा फेंकने घर से बाहर आओगी तो अचानक देखो कि सामने अरे कौन है, अरे ये तो हमारा पड़ोसी है, मशहूर सर्जन है तेहरान का, सारे तेहरान मशहूर है, खुद ही कूड़ा फेंकने बाहर आया। दूसरी तरफ देखोगे अरे कोई बड़ी गाड़ी खड़ी है किसी बड़ी शख्सियत की, तीसरे घर से गाड़ियों के कारखाने का चीफ कूड़ा लेकर बाहर निकल रहा होगा, ये तुम देखोगे। तीनों कूड़ा फेंकने बाहर जाएंगे, अलग सलेक हो जाएगा, अरे इसी तरह हम बड़े बन जाएंगे, तरक्की करेंगे, उन लोगों के साथ आना जाना रखेंगे, दोस्तियां बढ़ेंगी, तुम उनकी खवातीन के साथ आना जाना करोगे, मैं भी मर्दों के साथ स्केटिंग गोल्फ खेलने जाया करूंगा, घुड़सवारी करूंगा, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान बड़े लोगों में शामिल हो जाता है और उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाता है। मजा आ गया ना, क्या ख्याल है?
बिल्ली को ख्वाब में नजर आते हैं चीचड़े जनाब।
क्या मतलब बेगम? अरे रुको तो, कौन सा ख्वाब?
देखो मैंने बताया है कि मुझे इस मसले के बारे में पूरी तरह से सोचना होगा। पहली बात तो ये है कि मेरे दो मसले हैं, एक मसला बच्ची का है कि जिसका तुमने बिल्कुल मना कर
मैंने
दिया है।
कब कहा? वो तो उस वक्त की बात थी जब हम हर तरफ मुश्किलात में घिरे हुए थे, किसने कहा कि नहीं चाहिए, इसीलिए तो कहता हूँ ना कि तुम आंखें खुली नहीं रखती और सोचती नहीं हो। देखो अजीजम, मैंने इस प्लान पर 4 घंटे मेहनत की, मैंने यहाँ सी लिखा है, यानी चाइल्ड के लिए है। अच्छा उस बच्चे का क्या नाम था जिसकी तुम तस्वीर लेके आई थी, फूफी जान ने जो दी थी तुमको, क्या नाम था उसका?
सदफ।
ये लो, सी से चाइल्ड, एस से सदफ, ये सदफ का कमरा हो गया, ये देखो। और क्या चाहिए?
और दूसरी बात ये कि अम्मी और बहजाद का भी इस घर में हिस्सा है, उनकी मर्जी के बगैर तो ये कदम नहीं उठा सकते ना।
ओ बेगम मैं समझा कोई और मसला, बहजाद को मुझ पर छोड़ दो, बहजाद को पैसा बुरा लगता है क्या, उसके बारे में फिक्र नहीं करो, तुम जाके अम्मी को कायल करो।
ओफो, बहरहाल मुझे उन 400 मिलियन के बारे में मजीद सोचना होगा, हमारी पूरी जिंदगी का सरमाया यही पैसा है, बिना सोचे समझे तो तुम्हें बिल्डिंग बनवाने के लिए नहीं दे सकती ना।
अरे
मैं,
मैंने कब मांगे हैं?
नहीं जानता
है, अभी तक सो रही हो, रुको जरा बात करनी है।
मैं नहीं जानती।
अरे तुम्हें मसला क्या है?
12 फ्लोर, हर फ्लोर में 2 फ्लैट।
अच्छा ठीक है, अब अम्मी को मत जगाना, ठीक है ठीक है,
मुझे सोचना पड़ेगा,
ठीक है
ठीक। इस बारे में तुम पता नहीं क्या कहते रहते हो, जब देखो कुछ ना कुछ।
मोहतरम मुसाफरीन, जो मुसाफरीन बर्लिन का सफर करना चाहते हैं वो अपना सामान मेहरबानी करें अपने पास और फ्लाइट पर सवार होने के लिए मुतल्लिका गेट पर दाखिल करें।
अच्छा हुमा साहिबा, यहाँ तक आपको आने की तकलीफ दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब, खुदा करे आपका सफर अच्छा और खुशगवार गुजरे।
ठीक है।
देखिए हुमा साहिबा, मेरा एक दोस्त है जो थोड़ा सा फलसफी मिजाज है, लेकिन उसका एक जुमला मुझे बहुत पसंद है, कहता है हम सब एक तूफान ज़दा कश्ती के मुसाफिर हैं कि जिसका अंजाम सिर्फ डूबना है। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि जब तक जिंदा रहें आसमान की तरफ देखें, समंदर के नीले पानी की तरफ, फूलों को सुनें और एक दूसरे से मोहब्बत करें ताकि इस सफ़र से लुत्फ़अंदोज हो।
खुदा
चले बेगम।
سلام سینہ صاحب، میں نخا ہوں۔
اچھا ہو تو ہو، بتاؤ کیا کام ہے؟
کیا ہے، لگتا ہے مجھ سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہوں۔
ناراض نہیں ہوں، بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہوں، صرف ایک چنگاری لگنے کی دیر ہے بس۔
بھائی اور بہن بالکل ایک جیسے ہو، تیز چلتے ہو لیکن بغیر احتیاط کے، صاف بات کرتے ہو لیکن بے مقصد۔
کمینے انسان، میرا مطلب میری ماں کی وفات اور باپ کے جیل جانے سے واضح ہو جاتا ہے۔ کیا مجھے پتا نہیں کہ ابو کا نمبر تم نے بہزاد کو دیا تھا؟
دیکھو سینہ صاحب، جو ہو گیا سو ہو گیا، میں نے اب ایک نیا بزنس شروع کیا ہے۔ فون کیا تھا کہ اگر تمہاری بہن بے روزگار ہے تو اسے بلا لوں، اس کا نمبر بند ہے اس لیے تمہیں فون کیا۔ سمجھ گیا آپ، اب ذرا ارغوان کو فون دو۔
آزر نیا صاحبہ۔
ٹھیک ہے آزر نیا صاحبہ، اس کو فون دو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔
اس وقت وہ ایران میں نہیں ہے،
2 مہینے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ وہ بیرون ملک جا چکی ہے۔
شوہر؟ اس نے شادی کر لی ہے کیا؟
ہاں، آپ کو خبر نہیں تھی، معاف کیجیے گا، آپ کو شادی کا کارڈ بھیجنا بھول گئے ہوں گے۔
کس سے کی ہے؟ میں جانتا ہوں اسے۔
نہیں معلوم، ہو سکتا ہے جانتے ہوں آپ، ان کے پرانے موکل
داؤدی صاحب۔
سچ؟ مبارک ہو۔ خیر سے کیس کے وکیل کی شریک حیات بن گئی؟
البتہ وہ وکالت نہیں کرتی، آپ کی مہربانی سے ان کی وکالت کا لائسنس کینسل ہو گیا ہے۔
اتفاق سے میں تمہاری بہن کی نادانیوں کی وجہ سے کچھ عرصے سے اپنے کام سے سسپینڈ ہو چکا ہوں، اس لیے جاب بدل لی ہے۔
اچھا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کا برا نہیں چاہنا چاہیے۔ اس کے بعد مجھے فون مت کرنا، سمجھ گئے نا؟
جناب۔
ہاں،
میز کرسی کہاں رکھے ہیں؟
وہیں پر، نہ اور کہاں۔
ٹھیک ہے جناب۔
ہما، ہما
جی
آؤ، مل گیا۔
ٹھیک ہے، آ رہی ہوں۔
نماز پڑھ رہی تھی، آ رہی ہیں۔
السلام علیکم ارغوان۔
وعلیکم السلام، کیسی ہو؟
میں ٹھیک ہوں، تم لوگ کیسے ہو؟
ہما کہاں چلی گئی؟ تھینک یو۔
کہیں نہیں، یہی ہے ہما صاحبہ۔
میں یہی ہوں جی۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں؟
فریدن بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کیمیو تھراپی سے کافی افاقہ آیا ہے، خدا کا شکر ہے۔ اگر علاج اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا، اور انشاءاللہ 2-3 ہفتے کے بعد ڈسچارج ہو جائیں گے۔
انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بات کر سکتے ہیں؟
شاید نہ کر سکیں، ان کو بڑا جی چاہتا تھا کہ تم کو دیکھیں۔ میں لیپ ٹاپ سامنے کر دیتی ہوں تاکہ تمہیں دیکھ لیں۔
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
ماشاء اللہ، نظر نہ لگے، چہرہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔
صحیح کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ سینہ کہو نا، اپنے البم کے لیے وزارت ارشاد سے لائسنس لے رہے ہو؟
ڈاکٹر صاحب البم پر کام کر رہے ہیں، کچھ ٹریکس وغیرہ تیار کیے ہیں، انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں گے تو ایڈٹ وغیرہ کر کے ایک اچھا البم ریلیز کریں گے انشاءاللہ۔
ارے ارے واہ، تو سینہ میرے لیے کچھ نغمے ای میل کر دو تاکہ فرید ان کو بھی سنا دوں۔
سینہ،
فلاورز، میرے فلاورز کیسے؟
अपने फूलों का पूछ रहे हैं।
ठीक है, बस आपकी दूरी के दुख में कलियां नहीं खिला रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप आएंगे, आपका साया उन पर पड़ेगा तो पूरा बाग गुलिस्तान बन जाएगा।
मेरा गार्डन कैसा है? मैंने उसे तुम्हारे हवाले किया है।
ठीक है सीना।
अरे सीना भाई, मम्मा की तबीयत ठीक है?
ठीक है। आपको कुछ काम तो नहीं यहाँ पर?
नहीं, मैं सदखे जाऊँ, कोई काम नहीं।
Excuse me, I have to prepare him for the city scan.
Yes, of course. Faridun साहब तैयार हैं। सीना मुझे काटना होगा। फरीदून को सीटी स्कैन के लिए ले जाना है। हुमा?
हुमा?
हुमा की जान। जी।
फरीदून के लिए दुआ करो ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नेक इंसान हो, खुदा तुम्हारी दुआ कबूल करेगा।
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़। यानी अभी तक उन्हें उनकी बीमारी के बारे में बताया नहीं था?
पता नहीं, बेचारा डॉक्टर, ये कैसी मुसीबत आई उन पर।
इंजीनियर साहब, जिंदगी के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा।
ठीक है अंकल, आप सही फरमा रहे हैं। आपने काम किया है और आप अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं। कारखाने में कुछ मसाइल पेश आए हैं, आप जरा तहमुल से काम लें जब तक हालात मामूल पर आ जाएं।
तो इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, तो क्या हम लोग 10 साल तक रुके रहेंगे?
क्या मैंने कहा कि मुफ्त काम करना है? जनाब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बेरोजगार होना बेहतर है या कर्ज खा होना?
कर्ज खा।
शाबाश, कर्ज खा इंसान बेरोजगार इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। बेरोजगार इंसान बेकारी का एहसास करता है, लेकिन कर्ज खा इंसान मुफीद होता है। प्लीज अब अपने अपने काम पर जाइए, एक दूसरे के साथ मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे हम लोग।
इंजीनियर साहब कैसे ठीक है? इन खराब मशीनों से तो कारखाना चलेगा नहीं, प्रोडक्शन कैसे होगा?
क्या होगा?
ठीक कह रहे हैं इंजीनियर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये साहब। क्या हाँ, कोई मौजिजा होने वाला है?
हाँ शायद मौजिजा भी रूनुमा और सब्र से बढ़कर क्या मौजिजा हो सकता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने काम पर जाइए। जी फरोजान फर साहब, जैसे ही आएंगे पहली फुर्सत में उनसे मीटिंग करूंगा ताकि आपकी पिछली तनख्वाह जल्द से जल्द अदा हो जाए। अब मेहरबानी करके अपने अपने काम पर तशरीफ ले जाइए। जाइए जाइए अपना अपना काम पर जाइए 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 काम कीजिए अपना और परेशान ना होइए।
क्या मुंह लेके हम लोग जाएंगे?
फरोजान फर साहब, फरोजान फर साहब सुन नहीं रहे हैं, तुम्हें बुला रहा हूँ।
कैसे हो?
गाड़ी कहाँ है?
जितनी कोशिश की स्टार्ट नहीं, टैक्सी से आया हूँ। क्या बात हुई?
हाँ ज्यादा ठीक नहीं है, मजीद देर करेंगे तो कारखाना बंद।
तो तुम किस मरज की दवा हो? किसी तरह से उनको राजी कर लेते ना।
खुदा के बंदे कैसे कायल करूं, मैंने क्या क्या मिन्नतें समाजते करके उनको काम पे भेजा है।
इसमें मिन्नत समाजत की क्या बात है? साफ साफ कह देते पैसा नहीं, बाद में बोनस समेत दे देंगे।
अरे अफलातून, ये कोई बच्चे तो नहीं कि जिनको लॉलीपॉप देकर चुप कराया जा सके। फाइनेंस ऑफिस में जाके मालूम कर चुके हैं कारखाने के अकाउंट में पैसा नहीं है, बिफर गए।
अगर इससे ज्यादा नहीं टाल सकते तो उनको जाके हकीकत बता दो।
क्या
कहो कि जनाब पिछले 2 महीनों से मुश्किल 2 ऑर्डर ले सके, कारखाने की आधी मशीनें खराब हो गई हैं।
ठीक है,
खराब हैं, पैसा नहीं है, मैं भी मौजजा नहीं कर सकता हूँ।
मैंने कब कहा कि मौजजा करो? मेरे भाई मैं कहता हूँ इन हालात में उनसे 2 मिनट बात तो करो। ये जो बोहरानी हालात है इनको किसी तरह से संभाल लो ना थोड़ी देर के लिए।
यानी क्राइसिस मैनेजमेंट करूं?
और क्या?
ठीक है, सब जाएं अपने अपने काम पर, जो काम नहीं करना चाहता वो चला जाए और अपने लिए कोई और दूसरा काम ढूंढ ले।
कौन सा काम? ये कैसा मैनेजमेंट है?
यही है बस।
देखो हर मसले का एक हल होता है, तुम बेहतर जानते हो, तुम उससे बेहतर जानते हो। अस्सलाम वालेकुम। आंखें चुराने के बजाय एक मंतिकी जवाब देना चाहिए तुमको।
जनाब आप मंतिकी इंसान हैं, माशाल्लाह हाजिर जवाब भी हैं, तो बताइए बताइए उनसे क्या कहूँ।
मेरे भाई
फरमाइए।
अलैकुम सलाम। इस कारखाने का पहिया रुक चुका है, इसे ग्रीस की जरूरत है, इसमें पैसा लगाने की जरूरत।
हाँ, लेकिन कहाँ से लाऊं?
बैंक से। अरे ये लोन फैसिलिटीज और इस तरह की सहूलियात किस लिए होती हैं? इन्हीं दिनों के लिए तो।
लोन
और क्या?
अच्छा अगर लोन लेना मुमकिन होता तो चचा ने क्यों नहीं लिया?
इसलिए कि बहजाज साहब लोन लेने के हजारों लफड़े होते हैं, लेटर बाजी होती है, जमानत चाहिए होती है, जामिन की जरूरत होती है।
मुमकिन नहीं है।
क्यों मुमकिन नहीं है?
पहले तो इन वजूहात पर जो तुमने कही, वक्त चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और सबसे अहम ये बात है कि कारखाना किसके नाम है?
चचा जान के नाम।
चचा जान जिंदा नहीं है, फिर क्या चाहिए? मिराज का लेटर चाहिए जो हमारे पास नहीं है।
हाँ कानून ऐसा ही है, लेकिन इस्तेसनात भी तो होते हैं।
कैसे इस्तेसनात?
ایک منٹ رکو تو ذرا.
اوف
دیکھو میرے بھائی، تم اگر اشارہ کرو گے تو میں ایسے 10 بندوں کو ڈھونڈ سکتا ہوں جو تھوڑے سے کمیشن کے بدلے اربوں کا لون بغیر نمبر کے لے سکتے ہیں، وہ بھی بہت کم ٹائم میں، وہ بھی کم انٹرسٹ پر اور لمبے عرصے کے لیے. کیا خیال ہے بتاؤ؟
اور بعد میں رشوت اور 2 نمبری کے جرم میں جیل جائیں، ہے نا؟ نہ، میں گڑے سے نکل کر کنویں میں گرنا نہیں چاہتا ہوں منوچر صاحب. دیوالیہ ہونا میرے خیال میں بے عزت ہونے سے بہتر ہے.
میری جان، تجارت کے لیے شیر جیسا دل چاہیے.
شیر کا دل چاہیے منوچر، گدھے کا دماغ نہیں. تم اگر سیدھے راستے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جی
معاف کیجیے گا سر، کچھ لیٹرز ہیں جسے آپ نے ضرور سائن کرنا ہے.
لائیے دیجیے.
اوہو، خدا رحمت کرے چچا جان پر. جیسے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ آپ ان سے دستخط لے رہی تھیں ان کاغذات پر، یاد ہے نا آپ کو؟
جی، خدا ان کی مغفرت کرے.
خدا ان کو بخشے اور بہزاد صاحب کو لمبی عمر دے. ارے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ.
تمہیں بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کارخانے کی مشکلات کی فکر کرو. ختم ہو گیا؟
جی سر.
یہ لیجیے.
عجیب ہے.
بہت شکریہ سر.
کوئی بات نہیں. یہ بتاؤ، اگر تم نہیں بولو گے تو مر جاؤ گے نا؟
ہاں ہاں
ہاں، سچ کہہ رہا ہوں. میں نے بھی کیا سوال کیا ہے
بہزاد. دیکھو، یہ جو پیسہ تمہیں میراث ملا ہے اس کو کارخانے پر لگا دو تاکہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں. جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو تم اپنا حصہ لے لینا اس میں سے.
منوچہر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں اس کارخانے کا ڈائریکٹر ہوں، مالک نہیں. کہ اپنے پیسے لا کر یہاں پر لگا دوں اور اس کے بعد سب لوگ جب مشکلات ہو جائیں تو مجھے بھول جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پیسے سے اس میں کیا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ میرے پیسے کی پلاننگ تم مت کرو، میں نے کر لی ہے پلاننگ.
کیا پلاننگ کی ہے؟
تم سے کیا مطلب؟ کنسٹرکشن کی لائن میں، انٹیریئر ڈیزائننگ.
ہاں، کدوم خواهد